अध्याय 20 कलीसिया के लिए साक्षियां। जैसे जैसे अंत निकट आता जाता है और दुनिया को अंतिम चेतावनी देने का कार्य बढ़ जाता है, वैसा हो। जो लोग वर्तमान सत्य को ग्रहण करते हैं उनके लिए ये बात और भी महत्व रखती है कि वे उनको साक्षियों की प्रकृति और प्रभाव के विषय में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें, जिनको परमेश्वर ने अपनी दूरदर्शिता द्वारा तीसरे दूत के संदेश के कार्य के संग उसके प्रारंभ ही से संबंधित किया है। प्राचीन काल में परमेश्वर ने मनुष्यों से नबियों और प्रेरितों के मुख से वार्तालाप किया। इन दिनों में वो अपनी आत्मा की साक्षियों द्वारा बोलता था। इतिहास में कभी कोई ऐसा समय नहीं आया जब परमेश्वर ने अपने लोगों को अधिक उत्साह के साथ आदेश दिए हों, जैसे वो इस समय उन्हें इच्छा और उस मार्ग के प्रति देता है। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों के बीच में चेतावनी और ताड़ना इस उद्देश्य से नहीं दी जाती कि उनके चरित्र नाममात्र की मंडलियों के मसीहियों के जीवन से अधिक दोषपूर्ण हैं, परंतु इसलिए कि उनके पास एक विशाल ज्योति है और अपने परमेश्वर के विशेष चुने हुए लोगों का पद धारण किए हुए हैं, जिनके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था लिखी हुई है। विभिन्न व्यक्तियों के लिए जो संदेश मिले हैं मुझे मिले, मैंने अवसर उनको लिख भेजा और कई एक परिस्थितियों में उन्हीं की प्रार्थना पर लिखा। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, तैसे तैसे ये कार्य मेरे परिश्रमों का एक जरूरी और भारी अंग बनता गया। एक दर्शन में जो 20 वर्ष हुए मुझे दिया गया था, मुझे ये आदेश दिया गया कि बोलने और लिखने द्वारा साधारण नियमों का वर्णन करें और साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों के खतरों, गलतियों और दोषों का विशेष वर्णन करें, ताकि सब लोगों को चेतावनी, ताड़ना और उपदेश प्राप्त हो। मुझे दिखलाया गया कि सबको अपने अपने मन की और जीवन की ध्यानपूर्वक छानबीन करनी होगी कि देखें कि उन्होंने भी कोई ऐसी गलती तो नहीं की है जिनके लिए दूसरों की ताड़ना हुई है और जो चेतावनी दूसरों को दी गई है, कहीं वे स्वयं उनकी परिस्थितियों से मेल नहीं रखती। यदि ऐसा हो तो उन्हें महसूस करना चाहिए कि वे उपदेश तथा ताड़नाएं विशेषकर उन्हीं के लिए दी गईं और उनका ऐसा व्यावहारिक प्रयोग करना चाहिए मानो कि वे विशेषकर उन्हीं के वास्ते लिखी गई हों। परमेश्वर की इच्छा है कि उन सब के विश्वास को जांचे जो मसीह के अनुयायी होने का दावा करते हैं। वो उन सब की प्रार्थनाओं की यथार्थता की जाँच करता है जो उत्सुकता से अपने कर्तव्य कर्म को जानने की इच्छा रखते हैं। वो कर्तव्य को स्पष्ट कर देगा। वो सबको पर्याप्त मौका देगा कि वे अपने हृदय के सारे गुणों का विकास करें। जो लोग उसकी व्यवस्था पालन का इकरार करते हैं उनकी परमेश्वर ताड़ना करता और उनका सुधार करता है। वो उनके पापों की ओर संकेत करता है और उनके पापों को खोल देता है, क्योंकि वो उनमें से समस्त पाप और दुष्टता दूर करना चाहता है, ताकि वे उसके भय में पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर उन्हें घुड़कता, ताड़ना देता और सुधारता है, ताकि वे शुद्ध, पवित्र, समुन्नत और अंत में उसके सिंहासन तक उच्चासीन हों। लोगों को धर्मशास्त्र की ओर संकेत करना, लिखी हुई साक्षियां नया प्रकाश देने के लिए नहीं, परंतु पहले से प्रकाशित सत्यों को स्पष्टता से हृदय पर अंकित करने के लिए है। मनुष्य का कर्तव्य परमेश्वर की और उसके भाई की ओर क्या है, उसका स्पष्टता से परमेश्वर के वचन में विशेष रूप में वर्णन किया गया है। परंतु तो भी आप में से थोड़े हैं जो दिए गए प्रकाश के पालन करने हारे हैं। अतिरिक्त सत्य उपस्थित नहीं किया गया, परंतु जो प्रमुख सत्य पूर्व दिए गए हैं परमेश्वर ने उन्हें साक्षियों द्वारा सरल कर दिया है, और अपने ही चुने हुए तरीके से वो उन्हें लोगों के सामने उनके हृदय को प्रभावित करने और उनमें जागृति उत्पन्न करने के हेतु लाया, ताकि किसी को बहाने का मौका न हो। साक्षियां परमेश्वर के वचन का मूल्य तुच्छ नहीं करती, परंतु उसको उठाती और मनों को उसकी ओर आकर्षित करती हैं, ताकि सत्य की सुंदर सरलता सबों के मन को भावे। बाइबल को रद्द करने के लिए पवित्र आत्मा कभी नहीं दिया गया, न कभी दिया जा सकता, क्योंकि धर्मशास्त्र स्पष्टता से बतलाता है कि परमेश्वर का वचन ऐसा माप है जिससे सारे सिद्धांतों और अनुभवों की परीक्षा की जाती है। यशाया घोषणा करता है, व्यवस्था और चेतौनी ही की चर्चा करें, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। यशाया 8:20। भाई इस बात को दिखलाने से मन को व्याकुल करता है कि वह प्रकाश जो परमेश्वर ने साक्षियों द्वारा दिया है परमेश्वर के वचन के अतिरिक्त है, परंतु इसमें वह इस बात को मिथ्या प्रकाश में दिखलाता है। इस तरीके से परमेश्वर ने उचित समझा कि वह अपने लोगों के मन को अपने वचन की ओर आकर्षित करने और उनको उसका एक स्पष्ट ज्ञान प्रदान करे। परमेश्वर का वचन अत्यंत धूमिल हृदय को भी प्रकाशमान करने को पर्याप्त है और उनकी समझ में आ सकता है जिनकी उसे समझने की इच्छा है। परंतु इसके होते हुए भी कुछ लोग जो परमेश्वर के वचन के अध्ययन का दावा करते हैं उसके सरलतम उपदेशों का खुला विरोध करते हुए पाए जाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि पुरुष और स्त्रियां किसी प्रकार का बहाना करें। परमेश्वर स्पष्ट और निर्दिष्ट साक्षियां देकर उनको वचन की ओर ले आता है जिन्होंने पालन करने में अवहेलना की थी। परमेश्वर का वचन सही आदतों के निर्माण के लिए साधारण सिद्धांतों से भरपूर है और सार्वजनिक और व्यक्तिगत साक्षियां उनके ध्यान को विशेषकर इन सिद्धांतों की ओर आकर्षित करने के लिए दी गई हैं। मैंने बहुमूल्य बाइबल ली और उसको कलीसिया के लिए साक्षियों से चारों ओर से घेर दिया। मैंने कहा, यहां प्रायः सारी परिस्थितियों की पूर्ति होती हैं जिन पापों से उनको घृणा करनी चाहिए। यहां पर उनकी ओर संकेत किया गया है। वह उपदेश जिनकी उनको इच्छा है यहीं पाए जाते हैं, जो यथार्थतः दूसरी परिस्थितियों के लिए भी उपयुक्त हैं। परमेश्वर आपको आज्ञा पर आज्ञा और नियम पर नियम देने को तैयार है, परंतु आप में बहुत कम हैं जो वास्तव में जानते हैं कि साक्षियों में क्या लिखा है। आपकी धर्मशास्त्र से पूरी पूरी जानकारी नहीं है। यदि आप परमेश्वर के वचन को इस इच्छा से अध्ययन का विषय बनाते कि बाइबल के स्तर तक आप पहुंच जाएं और मसीह को सिद्धता को प्राप्त करें, तो आपको साक्षियों की आवश्यकता न होती, क्योंकि आपने परमेश्वर की प्रेरित पुस्तक से जानकारी प्राप्त करने में अवहेलना की है। इसलिए उसने यह युक्ति निकाली कि इन साधारण सीधी साक्षियों के द्वारा आप तक पहुंचे और आपका ध्यान प्रेरणा के उन वचनों की ओर आकर्षित करे जिनको पालन करने में आपने उपेक्षा की है, और आपसे अनुरोध करें कि आप अपने जीवन का निर्माण इन पवित्र सर्वोच्च उपदेशों के अनुकूल करें। साक्षियों को उनके फलों से परखिए। साक्षियों को उनके फलों से परखिए। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? उनके प्रभाव से क्या क्या नतीजे निकले हैं? जितने इन बातों को जानना चाहते हैं वे अपने को इन दर्शनों के परिणामों से परिचित करा सकते हैं। परमेश्वर ने दर्शनों के फलों को शैतान की शक्तियों द्वारा तथा शैतान के काम में सहायता पहुंचाने वाले मानव अभिकरणों के विरोध के बावजूद जीवित रखकर बढ़ने दिया है। मंडली की गलतियों के कारण प्रताड़ना देकर उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए उन्हें सिखा रहा था अथवा नहीं। चाहे यह परमेश्वर का हो या न हो, परमेश्वर का शैतान के साथ कोई साझा नहीं। मेरे कार्य पर या तो परमेश्वर की छाप है या शत्रु की छाप है। इस प्रसंग में कोई आधों आध का हिसाब नहीं है। साक्षियां या तो परमेश्वर की आत्मा की ओर से दी गई हैं या दुष्टात्मा की ओर से। जब प्रभु ने नबूवत की आत्मा द्वारा अपने को प्रकट किया, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल मेरे सामने गुजरे हैं। मुझे उन लोगों के चेहरे दिखलाए गए जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था, परंतु वर्षों बाद जब मैंने उन्हें देखा तो तुरंत उन्हें पहचान लिया। उन विषयों के स्पष्ट ज्ञान के साथ जो मुझे इससे पहले दिखाए गए थे, जागकर और उठकर मैंने आधी रात को चिट्ठियां लिखी जो महाद्वीप के पार भेजी गईं। ऐसी निर्णायक घड़ी पर पहुंची जिनके द्वारा परमेश्वर का कार्य बड़े खतरे से बच गया। कई वर्षों तक मेरा यही काम रहा। किसी शक्ति ने मुझे प्रभावित किया, बुराइयों पर ताड़ना और धमकी दी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी न था। यह काम ऊपर से है या नीचे से? शैतान का काम है संदेह पैदा करना।
अनेक परिस्थितियों में साक्षियों का पूर्णतः स्वागत किया जाता है।
पाप और पाप की लत के बंधन तोड़ डाले जाते हैं और परमेश्वर की दी हुई ज्योति के अनुसार सुधार का कार्य आरंभ हो जाता है। अन्य दशाओं में पाप की लत का समर्थन होता है, साक्षियों का तिरस्कार किया जाता है और उनको अस्वीकार करने के हेतु बहुत से झूठे बहाने उपस्थित किए जाते हैं। यथार्थ कारण नहीं बतलाया जाता। नैतिक साहस के अभाव के कारण ऐसा होता है। नैतिक साहस वह इच्छा जो परमेश्वर की आत्मा द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके अभाव से हानिकारक आदतों का त्याग नहीं हो सकता है। परमेश्वर की दी हुई निर्दिष्ट साक्षी के प्रति शैतान को संदेह उत्पन्न करने और विरोध खड़ा करने की योग्यता है, और कई एक तो उन पर शक करना और टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछना तथा हेरफेर की बातें करना अपनी चतुराई का एक शुभ लक्षण समझते हैं। संदेह करने की इच्छा रखने वालों को संदेह करने की काफी गुंजाइश होगी। परमेश्वर अविश्वास के सारे अवसरों को नहीं हटा देता है, वह प्रमाण देता है जिसे नम्र मन के नम्रता और सीखने की प्रवृत्ति से सावधानी के साथ परीक्षण करना चाहिए और प्रमाण के बल पर निर्णय देना चाहिए। निष्पक्ष मन वाले व्यक्ति को परमेश्वर पर्याप्त जो नहीं समझ सकता है और साक्षियों के दबाव से हट जाता है, वह अविश्वास और संदेह पूर्ण द्विविधाओं के ठंडे हतोत्साह वायुमंडल में पर जाएगा, जहां उसके विश्वास का जहाज चकनाचूर हो जाता है। शैतान की योजना यह है कि साक्षियों की ओर परमेश्वर के लोगों का विश्वास कमजोर हो जाए। शैतान आक्रमण करना जानता है, वह लोगों के मन में कार्य अध्यक्षों की ओर ईर्ष्या और असंतोष को उभारता है, फिर वरदानों पर संदेह प्रकट करवाता है और प्रभाव कम होने से दर्शन द्वारा दिए गए उपदेशों का अनादर किया जाता है। तत्पश्चात हमारी स्थिति के स्तंभ अर्थात हमारे विश्वास के प्रमुख तथ्यों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, फिर पवित्र शास्त्र की ओर संदेह होने लगता है और अंत में विनाश की ओर कदम बढ़ते हैं। साक्षियों पर संदेह और उनका तिरस्कार किया जाता है। शैतान यह जानता है कि धोखा खाए हुए लोग इतने ही को पर्याप्त न समझेंगे, फिर तो वह अपनी कोशिशों को दुगना कर देता है और लोगों में खुलम खुल्ला उपद्रव मचवाता है। इस स्थिति असाध्य होकर विनाश को पहुंचाता है। परमेश्वर के कार्य के संबंध में शंका और अविश्वास को स्थान देने से और संदेह और कुटिल ईर्ष्या की भावनाओं को अपने मन में स्थान देकर अपने को पूर्ण धोखे के लिए तैयार कर रही हैं। वे उनके विरुद्ध कुटिल भावनाओं को लेकर उठ खड़े होते हैं, जो उनकी गलतियों को उन पर प्रकट करने तथा अपराधों की ताड़ना करने का साहस करते हैं। केवल वे ही लोग भयंकर स्थिति में नहीं हैं जो प्रत्यक्ष में साक्षियों को रद्द करते अथवा उन्हें शंका की दृष्टि से देखते हैं। प्रकाश का अनादर करना उसको अस्वीकार करने के समान है। यदि साक्षियों पर आपका विश्वास न हो तो आप बाइबल के सत्य से भटक जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत साक्षियों पर संदेह करेंगे और उनका विश्वास हट जाएगा। अतः मुझे आपकी आत्माओं के लिए दुखी होकर चेतावनी देनी पड़ती है। कितने हैं जो इस चेतावनी पर ध्यान देंगे? साक्षियों से अनभिज्ञ रहना कोई बहाना नहीं। अनेक उस प्रकाश के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, क्योंकि वे उन पुस्तकों को नहीं पढ़ते जिनसे सावधानी, तारना तथा चेतावनी का प्रकाश और ज्ञान प्राप्त होता है। संसार की चिंताओं, वेशभूषा के प्रति स्नेह और धर्म के अभाव ने ध्यान को उस प्रकाश से हटा दिया जिसे परमेश्वर ने अनुग्रह करके दिया है, जबकि पुस्तकें और पत्रिकाएं, जिनमें गलतियों भरी पड़ी हैं, सारे देश में फैल रही हैं। हर कहीं अविश्वास और नास्तिकता फैल रही है। बहुमूल्य प्रकाश जो परमेश्वर के सिंहासन से चमक रहा है, दीवट के नीचे छिपाया जा रहा है। परमेश्वर इस उपेक्षा के लिए अपने लोगों को उत्तरदायी ठहराएगा। प्रकाश की प्रत्येक किरण के लिए जो उसने हमारे मार्ग पर चमकाई है, हिसाब देना होगा, चाहे उसका हमने धार्मिक बातों की उन्नति के लिए सदुपयोग किया है अथवा उसका तिरस्कार किया, क्योंकि प्रकृति का अनुकरण अधिक रुचिकर प्रतीत हुआ।
साक्षियों का प्रत्येक सब्बत मानने वाले परिवार में प्रयोग होना चाहिए और भाइयों को उनका मूल्य जानना और उनसे उन्हें पढ़ने का अनुरोध करना चाहिए। इन पुस्तकों को कम तादाद में रखने का प्रबंध अच्छा न था कि प्रत्येक मंडली में केवल एक ही सेट रखा जाए। उनको प्रत्येक परिवार के वाचनालय
लाइब्रेरी में रखना चाहिए और उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए। उनको ऐसी जगह में रखना चाहिए जहां उन्हें बहुत से लोग पढ़ सकें। मुझे बतलाया गया कि चेतावनी, प्रोत्साहन और ताड़ना की साक्षियों में अविश्वास ने उनकी आंखों को ऐसा बंद कर दिया है कि वे अपनी असली हालत से अनभिज्ञ है। वे सोचते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की ताड़ना संबंधी साक्षी अनावश्यक है, अथवा ये ऐसे लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह और आत्मिक विवेक की अत्यंत आवश्यकता है ताकि वे अपने आत्मिक ज्ञान की कमी को मालूम कर सकें। बहुत से लोग जो सत्य से गिर गए हैं, अपने ऐसे रवैये के लिए वे ये कारण बतलाते हैं कि साक्षियों में कोई विश्वास नहीं है। अब प्रश्न ये है, क्या वे अपनी प्रतिमा को, जिसे परमेश्वर दोषी ठहराता है, त्याग देंगे, अथवा वे अपनी कुटिल कार्यविधि के पोषण में लगे रहेंगे और उस प्रकाश का तिरस्कार करेंगे जिसे परमेश्वर ने उन बातों को निंदा करते हुए दिया है जो उन्हें अति प्रिय है। अब जो उनको प्रश्न तय कर लेना चाहिए सो ये है, क्या मैं अपने आप का इनकार करके साक्षियों को, जो मेरे पापों को दर्शाते हैं, परमेश्वर दत्त जैसे स्वीकार करें, या साक्षियों को अस्वीकार करें क्योंकि वे मेरे पापों की निंदा करती हैं। साक्षियों का गलत प्रयोग। साक्षियों की पहली मुद्रित प्रति में परमेश्वर के लोगों को दिए गए प्रकाश के अनुचित उपयोग के विरुद्ध चेतावनी अंकित है। मैंने उसमें वर्णन किया कि कुछ लोगों ने मूर्खता का मार्ग अपनाया है जब उन्होंने अपने विश्वास का वर्णन अविश्वासियों से किया, और जब उनसे विश्वास के लिए प्रमाण पूछा गया तो उन्होंने बजाय बाइबल से सबूत देने के मेरे लेखों से पढ़कर सुनाया। मुझे दिखलाया गया कि उनकी ये कार्यवाही न्याय संगत न थी। इससे अविश्वासियों में सत्य के विरुद्ध पक्षपात की भावना उत्पन्न हो जाती है। जो लोग साक्षियों की भावनाओं से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उल्लेख करना उचित नहीं है। समय समय पर साक्षियों के उपयोग के संबंध में अन्य चेतावनियां इस प्रकार दी गई हैं। कुछ उपदेशक बहुत पीछे हैं। वे दी गई साक्षियों पर विश्वास व्यक्त करने का दावा करते हैं, और कुछ उन्हें उन लोगों के लिए, जिनका साक्षियों के विषय में कोई अनुभव नहीं, कई नियम बनाते हुए हानि पहुंचाते हैं, परंतु स्वयं उनको पालन करने में असफल रहते हैं। बार बार उनको साक्षियां दी गईं, परंतु उन्होंने उनका सर्वथा अनादर ही किया। ऐसों का व्यवहार अनुचित है। मैंने देखा कि परमेश्वर ने जो कुछ दूसरों के अपराधों तथा पापों के विषय में बतलाया है, उससे फायदा उठाया है। जो कुछ दर्शन में बतलाया गया, उसका उन्होंने अति उग्र अर्थ लिया है और उसको ऐसा कुचला है कि लोगों का विश्वास परमेश्वर के दिए हुए दर्शन पर निर्बल हो गया है और मंडली को भी निरुत्साह तथा निराश कर दिया है। साक्षियों की समालोचना करना भयानक है। हाल ही में स्वप्न में मैं एक सभा के सामने लाई गई जहां कुछ लोग चेतावनी की एक गंभीर साक्षी के प्रभाव को, जिसे मैंने उन्हें दी थी, नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे कहने लगे, बहन व्हाइट की साक्षियों पर विश्वास करते हैं, परंतु जब वो हमको ऐसी ऐसी बातें बतलाती हैं जिन्हें उन्होंने दर्शन में नहीं देखा, विशेषकर विचाराधीन को, तो उनके वचन हमारे निकट किसी अन्य व्यक्ति के वचनों से अधिक माने नहीं रखते। उसी समय परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आया और मैंने उठकर उनको परमेश्वर के नाम से डांटा। अब यदि वे लोग, जिन्हें ये गंभीर चेतावनियां दी गई, कहें ये तो केवल बहन व्हाइट की निजी राय है, तो मैं अपनी ही बात पर चलूंगा, और यदि वे उन्हीं बातों को करते रहें जिनके विरुद्ध चेतावनी दी गई थीं, और ये दिखलावे कि वे परमेश्वर के परामर्श को तुच्छ समझते हैं, तो नतीजा वही होगा जो परमेश्वर ने मुझे दिखलाया, परमेश्वर के कार्य को हानि और उनका स्वयं का नाश। कुछ हैं जो अपनी बात की पुष्टि के लिए साक्षियों में से ऐसी उक्ति निकालेंगे जिनसे वे समझते हैं कि उनके विचारों का समर्थन होना, और उन्हीं पर सबसे मजबूत इमारत खड़ी करेंगे। परंतु जो बात उनकी कार्यवाही पर प्रश्न उठावे, अथवा जो बात उनके विचारों से मेल नहीं खाती, उन्हें वे बहन व्हाइट की निजी राय बतलाते हैं और उसकी स्वर्गीय उत्पत्ति का इनकार करके उसे अपनी ही राय के बराबर समझते हैं। और अब हे भाइयों, मैं आपसे विनती करती हूं कि मेरे और लोगों के बीच मध्यस्थ का काम न कीजिए और उस प्रकाश को न बुझाइए जिसे परमेश्वर उनके पास आने देना चाहता है। अपनी आलोचना द्वारा साक्षियों में से जोर और शक्ति न निकालिए। ऐसा ख्याल न कीजिए कि आप उन्हें तोड़ मोड़ करके अपने ही विचारों के अनुकूल बना सकते हैं, यह दावा करते हुए कि परमेश्वर ने आपको स्वर्गदूत प्रकाश और मानवी बुद्धि की उचित में विवेक करने की योग्यता प्रदान की है। यदि साक्षियां परमेश्वर के वचन के अनुकूल नहीं बोलती हैं तो उनको त्याग दीजिए। मसीह और बेलियाल दुष्टात्मा में मेल नहीं हो सकता। यीशु की खातिर लोगों के मनों को मानवो मिथ्यावादानुवाद और नास्तिकता के चक्कर में न डालिए और परमेश्वर के कार्य को अप्रभावित न होने जाए। आत्मिक विवेक के अभाव से परमेश्वर के इस साधन को ठोकर की चट्टान न बनाइए, जिसकी वजह से बहुत से ठोकर खाकर गिर पड़े और फंसकर पकड़े जाएंगे। ताड़ना को कैसे स्वीकार करें? जिन लोगों को परमेश्वर की आत्मा द्वारा ताड़ना दी जाती है उन्हें उस नम्र पात्र के विरुद्ध नहीं उठ खड़ा होना चाहिए। परमेश्वर ही है, न कि गलती का पुतला नाशमान मनुष्य, जिसने उसे विनाश से बचने का संदेश दिया है। मानव प्रकृति के अनुकूल नहीं है, ताड़ना को अंगीकार करना नहीं संभव है। कि मनुष्य का हृदय जो परमेश्वर की आत्मा से प्रकाशमान नहीं है, ताड़ना की जरूरत को अथवा उस आशीष को जो वह देने को है महसूस करें। जब मनुष्य प्रलोभन की ओर गिर जाता है और पाप में लिप्त होता है तो उसका मन अंधकारमय हो जाता है, नैतिक ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है, अतःकरण की चेतावनियों को तुच्छ समझा जाता है, तत्पश्चात उसकी आवाज स्पष्टता से नहीं सुनाई पड़ती है। वह शनै शनै भलाई और बुराई को पहचानने की शक्ति को यहां तक खो बैठता है कि उसको परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति का कोई बोध नहीं रहता। वह भले ही धार्मिक विधियों का पालन करता हो और उत्साहपूर्वक उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करता हो, परंतु उसकी शक्ति से रहित है। उसकी दशा वैसी है जैसी सच्ची साक्षी द्वारा वर्णन की गई है। तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हुआ हूं और मुझे किसी वस्तु का प्रयोजन नहीं है, और नहीं जानता कि तू ही दीनहीन और अभागा है और कंगाल, अंधा और नंगा है। जब परमेश्वर का आत्मा ताड़ना के संदेश द्वारा उसकी ऐसी दशा की घोषणा करता है तो उसको यह नहीं सूझता कि संदेश यथार्थ है कि नहीं। क्या वह चेतावनी को ठुकरा देवे? नहीं। परमेश्वर ने पर्याप्त प्रमाण दिए हैं ताकि जिसका जी चाहे वे साक्षियों की प्रकृति के विषय में अपने को संतुष्ट कर लें और उनका परमेश्वर की ओर से होना स्वीकार करके उनका कर्तव्य हो जाता है कि उसकी झिड़कियों को भी ग्रहण करे, यद्यपि वे स्वयं अपनी कार्यवाही की दुष्ट कृतियों को नहीं देख पाते। यदि वे अपनी हालत को पूरी तौर से महसूस करते तो ताड़ना ही की क्या आवश्यकता पड़ती? क्योंकि वे जानते नहीं, इसलिए परमेश्वर दया दृष्टि से उनके सामने रखता ताकि वे अधिक देर हो जाने से पहले पश्चाताप करें और सुधर जाएं। जो लोग चेतावनी को तुच्छ समझते हैं वे आत्म धोखे के अंधकार में छोड़ दिए जाएंगे, परंतु जो उस पर ध्यान देते और उत्साहपूर्वक पापों को अपने से दूर करते ताकि आवश्यकीय अनुग्रह प्राप्त करते, वे अपने हृदय के कपट को खोल देंगे कि प्यारा त्राणकर्ता आकर उनके संग वास करे। जो परमेश्वर के संग घनिष्ठ संबंध रखते हैं वे उसकी आवाज को पहचानते हैं। जो आत्मिक हैं वे आत्मिक बातों को समझते हैं। ऐसे लोग धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि परमेश्वर ने उनकी गलतियों को बतला दिया है।
दाऊद ने उसके संग परमेश्वर के व्यवहार से बुद्धि प्राप्त करके और परम प्रधान की ताड़ना के आगे नम्रता से सिर नवाया। नातान नबी द्वारा खींचे गए इसकी वास्तविक दशा के सच्चे चित्र ने दाऊद को उसके पापों से सूचित करवाया और उनको दूर करने में उसकी सहायता की। दाऊद ने नम्रता के साथ परामर्श को स्वीकार किया और अपने को परमेश्वर के सामने दीन बनाया। उसने कहा, यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्राण को बहाल कर देती है। भजन संहिता 19:7। परंतु यदि ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। इब्रानियों 12:8। हमारे प्रभु ने कहा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रकाशित वाक्य 3:19।
और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इब्रानियों 12 आयत 11। यद्यपि अनुशासन कड़ुआ लगे तो भी वह पिता के कोमल प्रेम द्वारा नियुक्त किया गया ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हों।